दोस्तों, फिजी में दक्षिणी हेमिस्फीयर का सबसे बदतरीन तूफान साइक्लोन विंसन आया है, जो कि कैटेगरी 5 का एक चक्रवात माना जा रहा है और इसमें लगभग 325 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली हैं और बारिश भी हुई है। आइए इस सिलसिले में चर्चा करते हैं सुबा स्थित हमारे संवाददाता राकेश कुमार के साथ। राकेश जी नमस्कार।
नमस्कार कुमार जी,
ये बताइए कि साइक्लोन विंसेंट की अब नवीनतम जानकारी क्या है?
आज सुबह 7 बजे कुमार जी गांधी मौसम दफ्तर द्वारा जो वार्निंग जारी हुआ था या फिर जो रिपोर्ट जारी की गई थी, उसके तहत ये बतलाया गया है कि साइक्लोन विंसन अभी भी कैटेगरी 5 सिस्टम में है, जैसे आपने मेंशन किया है, और वो अब जीवा आइलैंड और यस्सावा से 140 किलोमीटर पश्चिम में है और बहुत धीमी गति से वो अभी भी तेजी से दूर जा रही है, लेकिन साथ साथ में अभी भी जो जीवा आइलैंड है या सावर्स और ममनुजा आइलैंड जो है वहाँ के लिए अभी भी तेज रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जो है वो बरकरार है। और मेरे ख्याल से जो दक्षिणी पश्चिमी विटिलेबू है उसके लिए भी झोंकों के साथ हवा चलने की जो चेतावनी है वो बरकरार है।
और बताया जाता है कि तमाम नगर के नगर, शहर के शहर बिल्कुल बह गए हैं, ध्वस्त हो गए हैं। तो एक व्यक्ति के तो मरने की खबर आई है, लेकिन आप और आगे प्रकाश डालिए इस स्थिति पर।
बिल्कुल सही आपने कहा है, अभी तक तो साइक्लोन विंसन से एक ही व्यक्ति के मरने की जो खबर है वो आम हुई है, लेकिन कुमार जी अभी भी जबकि यहाँ पर टेलीफोन सेवा जो है और जो अन्य खबरें जगह जगह से वो मुख्य जो सेंट्रल पुलिस स्टेशन है वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, तो अभी भी कितने लोगों की इसमें या कितने जानमाल की हानि हुई है इसकी जो कंफर्मेशन है वो नहीं हुई, लेकिन हाँ एक व्यक्ति की मौत हुई है ये तो कंफर्म हो चुका है। इसके साथ साथ में यहाँ पर विटिलेबू में तो पावर सप्लाई है ही नहीं, इसके साथ में बनवालेबू में भी हमें बताया गया है कि वहां पर भी पावर सप्लाई जो है वो नहीं है। इसके साथ साथ में कल रात से यहाँ पर पानी सप्लाई भी जो है वो बंद है, क्योंकि पावर सप्लाई ठप होने के कारण पानी सप्लाई पर भी बाधा पड़ा है। तो स्थिति अभी यहाँ पर जहाँ तक जानमाल की हानि का सवाल है उससे कंफर्मेशन तो एकदम से नहीं हुआ है कि कितने की हुई है, लेकिन हाँ जो तूफान से यहाँ के लोगों की जो संपत्तियां हैं उन्हें जो क्षति पहुंची है वो तो बहुत भारी बतलाई गई है। उधर लाऊ में तो 3 विलेज पूरी तरह से ही नष्ट हो गए हैं, ऐसा हमें बताया गया है। तालेबू की ओर भी कल रात को काफी घर जो है वो उनकी छतें जो है वो उड़ गई हैं और लोग राहत केंद्रों में शरण लिए हुए हैं। इसके साथ साथ में यहाँ सूबा के दक्षिणी अगर इलाकों में देखे तो यहाँ के भी कई घर जो है उनकी छतें उड़ गई हैं और लोग अपने परिवार के घर पर या फिर राहत केंद्रों में शरण लिए हुए हैं।
राहत कार्यकर्ता और राहत एजेंसियां बता रही हैं कि लगभग 700 इवैक्यूएशन केंद्र खोले गए हैं और खास तौर से बच्चों को पुनर्स्थापित करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वो कार्य करना चाह रही हैं, लेकिन कम्युनिकेशन संचार ही ठप है तो उनके लिए सहायता कार्य करना भी मुश्किल हो रहा है। ये बताइए कि सुबह में कुछ असर इसका कितना दिखाई दे रहा है? पावर कट तो हो गया है वहां भी,
काफी ज्यादा यहाँ पर भी है सुबह में कुमार जी। कल रात को हम लोग तो यहाँ पर ही सुबह से 5 माइल्स की दूरी पर तमाबुआ में हैं और हम आपको बता दें कि यहाँ पर पावर कट तो है ही और साथ साथ में वाटर सप्लाई जो है वो भी ठप है, और जो स्थिति यहाँ पर है वो पहले के मिलान में बहुत ज्यादा बुरी हो गई है। जैसे पहले भी हम लोगों ने तूफान का सामना किया है, लेकिन इतने सालों बाद आज मेरे ख्याल से 40 सालों बाद सूबा के लिए इतनी बुरी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है कि यहाँ पर भी कई घर जो है उनकी छतें उड़ गई हैं। और जैसे आपने कहा है, बिल्कुल सही आपने कहा है, यहाँ सूबा इलाके में तो जो बस सर्विसेज है, जो बस की सेवा है वो पूर्ण रूप से ठप है, यहाँ पर बस सेवाएं लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसके साथ साथ में जो रिलीफ एजेंसियां हैं जैसे रेडक्रॉस है और अन्य जो एजेंसियां है, पुलिस के जो लोग हैं, अफसर हैं, और सेना के जो लोग हैं वो लोगों को सेवा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं और करना चाहते हैं, लेकिन संचार माध्यम चालू न होने के कारण से उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये बतला पाना काफी कठिन हो रहा है कुमुद जी कि कहाँ पर कौन लोग कैसे फंसे हैं या कैसी स्थिति में है, क्योंकि जो सेवाएं हैं वो अच्छी प्रकार से भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, खास रूप से जो टेलीफोन की सेवाएं हैं।
हम लोग की खुशकिस्मती है कि किसी तरह आपके साथ फोन पर संपर्क हो पाया है। बताया जा रहा है कि दूर दराज इलाकों का तो बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं लगाया जा रहा कि वहां जान माल की कितनी क्षति पहुंची है, और अब तो उड़ानें भी फिजी ऑस्ट्रेलिया के बीच और कई उड़ानें बिल्कुल बंद कर दी गई हैं जब तक स्थिति बेहतर नहीं होती।
स्कूलें भी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वजह से आदेश जारी हुआ है कि स्कूलें एक सप्ताह के लिए स्थिति को देखते हुए बंद किया जा रहा है, और जैसे ही मौसम में कुछ बदलाव होगा तो इसकी भी नवीनतम जो सूचना है वो जारी होगी कि कब से स्कूल खुलेंगे और बच्चे स्कूल जा सकते हैं, क्योंकि कई स्कूलें जो ऐसे हैं जी उन्हें राहत केंद्रों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसे में कह पाना अभी मुश्किल भी है कि स्कूलें भी कब सामान्य होंगी।
ऐसा भी है कि अब तो फिलहाल तो ये घर वगैरह तो नष्ट हुए हैं, इसके बाद बीमारियां फैलने का भी डर होगा, और मेरे ख्याल में पूरे खेत खलिहान भी बिल्कुल तबाह हो गए होंगे, तो पानी की और खाने की किल्लत होगी, साथ ही बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ सकता है।
बिल्कुल, सहायक स्वास्थ्य मंत्री बीना भट्टाकर जी ने भी रेडियो पर ये कहा है और लोगों को ये बतलाया भी है कि अब ऐसे मौसम में और ऐसी स्थिति में हमेशा लोगों को सावधानी बरतनी है खान पान को लेकर, और जहां तक पानी के इस्तेमाल का सवाल है तो ये बेहद जरूरी है कि ऐसे में लोग पानी उबाल कर, जो पीने वाला खास रूप से पानी है उसे उबाल लें, उबाल कर, और ये ऐसी चेतावनी जो है और सलाह जो है वो समस्त फिजी के लोगों के लिए बतलाया गया है। और अभी भी फिजी में यहाँ सुबह में गंभीर बारिश जो है वो हो रही है, बादल भी गरज रहे हैं, और लोगों को बतलाया जा रहा है कि वे घर से बाहर ना निकलें, मौसम को देखकर और स्थिति को देखकर ही बाहर निकले, क्योंकि अभी भी रह रहकर झोंकों के साथ हवा चलती है, और पानी जो है खान पान की जो जितने भी वस्तुएं हैं वे घर में ही इकट्ठा करके रखने और बीमारियों से बचने के लिए यही उचित सलाह दी जा रही है। लोग स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए और पानी उबाल
जी, वहां की सरकार ने 30 दिनों के लिए राष्ट्रीय संकट की घोषणा भी कर दी है, और कल वहां कर्फ्यू भी लगा दिया गया था ना।
बिल्कुल, कल शाम 5 बजे से कोई भी जुगाड़ी है उसे रास्ते पर जाने की अनुमति नहीं थी, और 5 बजे तो स्थिति बहुत बुरी हो गई थी कुमुद जी। मेरे ख्याल से स्थिति को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने काफी पहले से ही गाड़ियां जो है और बस सेवा है, टैक्सी सेवा इत्यादि जो है वो बंद कर दी थी, लेकिन हाँ लोगों को कुछ खरीदने की आवश्यकता जरूर पड़ रही थी। कुछ सुपरमार्केट जो है वे खुले हुए थे ताकि लोग अंत समय तक भी जाकर शॉपिंग इत्यादि जो है वो कर सके, ऐसी वो कल भी लागू थी, और अभी भी लोगों को बतलाया जा रहा है कि स्थिति को देखिए, और अगर बहुत गंभीर बारिश हो रही हो, बाढ़ वाला इलाका हो, तो वे घर से बाहर ना निकले, और निचले इलाकों के लिए तो वैसे ही बतलाया गया है कि गंभीर बारिश जगह जगह पर होगी, तो ऐसे में लोगों से मांग की जा रही है कि वे जान माल को अपने जो है वो ऊपर ही खिसका लें ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो, और खुद भी ऊपर स्थान पर ही रहे ताकि बाढ़ की चपेट में आकर उनका कोई नुकसान ना हो, जान को कोई खतरा ना हो।
जी, राहत एजेंसियां तो भरसक कोशिश कर रही हैं, संचार नहीं है तो उन्हें भी कष्ट हो रहा है राहत कार्य करने में, लेकिन फिजी का मैं जानती हूँ भाईचारा बहुत है, तो ये बताइए कि आपस में जो दोस्त बंधु निकट रहते हैं वो भी एक दूसरे की काफी मदद कर रहे होंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। फिजी की यही एक खूबी है कुमुद जी की, यहाँ के लोग जब संकट का समय आता है तो एक हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल भी एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं। आज सुबह भी हम देख रहे थे यहाँ पर हमारे आस पड़ोस के लोग भी जो थे, लोगों से एक दूसरे से पूछ रहे थे भाई कोई किसी चीज की मदद की जरूरत है अगर हो तो जरूर बताना, तो एक दूसरे के घर पर लोग जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और एक दूसरे का हाल चाल अवश्य लेते हैं। हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति में जबकि अभी सरकार हमारी पूर्ण रूप से सहायता करने में असमर्थ है, जो पुलिस ऑफिसर्स है और आर्मी ऑफिसर्स है ये भी लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो जिन जिन लोगों के जो टेलीफोन सेवाएं हैं वो जारी है, अगर वे संपर्क कर सकते हैं तो वे अवश्य कर सकते हैं, पुलिस को भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो ऐसी स्थिति में अपने पड़ोसियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और इसकी खूबी कहती है कि लोग पड़ोसियों से मदद ले ही लेते हैं और एक दूसरे की सहायता अवश्य करते हैं। कुमुद जी बिल्कुल सही आपने कहा
जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी प्रार्थनाएं शुभकामनाएं फिजी के हर व्यक्ति हर बाल बच्चे के साथ है।
बहुत बहुत शुक्रिया कुमुद जी, बस यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश पर ये जो संकट की स्थिति आई हुई है जल्द ही टल जाए, और लोगों से भी हम यही मांग कर रहे हैं, खास रूप से जो फिजी के जितने भी लोग कार्यक्रम को इंटरनेट के मार्फत सुन रहे हैं और वहां पर अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमारी आवाज पहुंच रही है, सभी से हम यही कहते हैं कि अवश्य फिजी के लिए प्रार्थनाएं करें।
शुक्रिया मित्रों, कार्यक्रम सुनने वाले जो लोग अपने रिश्तेदारों या बंधुओं के बारे में फिजी में चिंतित हैं और उनके साथ संपर्क नहीं साध पा रहे हैं, उनके लिए 24 घंटों तक कॉन्सुलर हॉटलाइन उपलब्ध है और वो नंबर है 1300555135। एक बार फिर, अगर आप चिंतित हैं और अपने बंधुओं के साथ रिश्तेदारों के साथ संपर्क नहीं साध पा रहे फिजी में, तो कॉन्सुलर हॉटलाइन पर आप फोन करिए 1300555 पर।